भारतीय स्त्री मुक्ति आंदोलन एक आकलन, पृष्ठ संख्या 52। 19वीं सदी वह सदी है जिसमें पहली बार भारत ही नहीं दुनिया भर में स्त्री समस्या पर बातचीत की शुरुआत हुई। इस समय अंग्रेजों और अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय लोग नई नई जानकारियां प्राप्त करने लगे। भारत में स्त्री स्वाधीनता को लेकर सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में बहसें चली। इसका मुख्य कारण था इस क्षेत्र में कई समाज सुधारकों का पैदा होना। इसी समय अंग्रेजी सभ्यता के साथ जहां एक तरफ टकराव की स्थिति बनती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने भारतीय संस्कृति के रूढ़ तत्वों पर विचार करना भी शुरू कर दिया। यह वही समय था जब पहली बार स्त्री की अशिक्षा, पर्दा प्रथा, विधवा, बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं पर बहस की शुरुआत हुई। कुलीनतावाद, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी प्रवृत्तियों के कारण समाज में बाल विधवाओं की संख्या बढ़ती गई। उस विधवा के साथ रिश्ते के पुरुष ही बलात्कार करते थे और गर्भवती हो जाने पर उसे प्रताड़ित करते वह आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते थे या फिर वैश्यालय में भेज बेच आते थे। इन सभी मुद्दों पर पहली बार विचार होने लगा। इस कार्य में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पैराग्राफ चेंज। स्त्री के बहाने जब बात शुरू हुई तो एक बड़ा वर्ग इस सुधार के विरोध में खड़ा हुआ, फिर भी बातचीत रुकी नहीं। इस समय सुधारों में समानता के अलंकारिक मुद्दे पर पुनरुत्थानवादियों के विचार अलग थे और सुधारवादियों के विचार अलग। दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के विरुद्ध परिभाषित किया। यह वही समय था जब भारत में अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा था। पैराग्राफ चेंज। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे। उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की और इस बहाने स्त्री शिक्षा और सती प्रथा के विरुद्ध अभियान छेड़ा, परंतु पुनरुत्थानवादियों के दबाव में कई वर्षों तक अंग्रेज सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने से हिचकते रहे। अंग्रेजों ने 4 दिसंबर 1829 को सती अधिनियम पास किया। इस अधिनियम में व्यवस्था दी गई कि हिंदू विधवा स्त्री को सती बनाने उसे पृष्ठ संख्या 53 जलाने या जिंदा दफन करने की कोशिश गैर कानूनी तथा आपराधिक अदालतों द्वारा दंडनीय है। संदर्भ राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, ब्रैकेट में 1800 से 1990, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सन 2002, पृष्ठ 28। इस अधिनियम के खिलाफ कट्टरपंथी हिंदू एकत्रित हुए और उन्होंने सती प्रथा को जायज ठहराते हुए याचिका दायर की। इसके बावजूद सुधारवादियों का आंदोलन रुका नहीं। ये सुधारक एक तरफ सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध लड़ रहे थे, दूसरी तरफ स्त्रियों की शिक्षा पर भी जोर दे रहे थे। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। लड़कियों के लिए स्कूल सबसे पहले अंग्रेज तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा 1810 में शुरू किए गए। स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित पहली पुस्तक किसी भारतीय भाषा ब्रैकेट में बंगाली में 1819 में एक भारतीय गुरु मोहन विद्यालंकार द्वारा लिखी गई, जिसे कलकत्ता की कन्या बाल समिति ने 1820 में प्रकाशित किया। 1827 तक मिशनरियों द्वारा हुगली जिले में 12 कन्या पाठशालाएं चलाई जाने लगी। एक वर्ष बाद लेडीज सोसाइटी फॉर फीमेल एजुकेशन इन कैलकाटा एंड इट्स विसिनिटी ने स्कूल खोले जो मिस कुक द्वारा चलाए गए। ऐसा देखा गया कि गरीब इलाके में खुले स्कूलों के बारे में जानने के लिए मुस्लिम स्त्रियां भी दिलचस्पी लेने लगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही अर्थात राधा कुमार की स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2002, पृष्ठ संख्या 29। पैराग्राफ चेंज। 1840 के दशक में बंबई और पूना शहर के उग्र छात्रों ने हिंदुत्व के सुधार का बीड़ा उठाया। उन्होंने स्वयं को कलकत्ता के देरोजियों की तर्ज पर ढाला और यंग पूना ग्रुप के नाम से ख्यात हुए। 1848 ईस्वी में बंबई के ब्राह्मण रहीस जी एच देशमुख ने हिंदू पुजारियों की कारगुजारी की पोल खोलने के लिए अनेक पर्चे प्रकाशित करते हुए उन मामलों पर हमला बोला, जबकि दलित ज्योतिराव फूले ने पूना में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। एक वर्ष बाद बंबई शहर में ब्राह्मणों तथा गैर ब्राह्मणों ने मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना की। इसके सदस्यों ने जाति बहिष्कार के विरोध में अभियान चलाया तथा गुप्त बैठकें कर उसमें एक साथ गोमांस खाया तथा शराब पी। उसी वर्ष एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई के छात्रों ने एक कन्या पाठशाला शुरू की तथा स्त्रियों के लिए मासिक पत्रिका निकाली। 1852 तक फूले ने 3 कन्या पाठशालाएं तथा अछूतों के लिए एक स्कूल खोला। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 38 से 39। पैराग्राफ चेंज। ज्योतिबा फूले चूंकि दलित जाति से थे, इसलिए प्रतिक्रियावादी ब्राह्मणवादियों को मौका मिल गया। उन लोगों ने फूले को असह्य यातना दी क्योंकि वह अछूत और स्त्रियों को शिक्षित कर रहे थे। इन पुरातन पंथी ब्राह्मणवादियों ने कई अवसरों पर उनकी पिटाई भी की। उन्हीं लोगों के दबाव में इन्वर्टेड कॉमा ओपन फूले के पिता ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और वह अपने ही समुदाय के अनेक लोगों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वही संदर्भ वही, पृष्ठ 41। पैराग्राफ चेंज। 1855 में ईश्वरचंद विद्यासागर ने भारत के गवर्नर जनरल को विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनाने के वास्ते एक याचिका दी। उस याचिका में अन्य तर्कों के साथ विद्यासागर ने एक तर्क यह भी दिया कि विधवा पुनर्विवाह पर रोक के कारण नैतिक संकट उत्पन्न हो गया। विधवाएं अवैध संबंध बनाने के लिए और वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर की जाती हैं। गवर्नर जनरल ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में इस कानून के विरोध में उच्च वर्ग के लगभग 60,000 हिंदुओं की तरफ से 40,000 से अधिक याचिकाएं पेश की गईं। इन याचिकाओं में इस तर्क का कि विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध से दुष्चरित्रता फैलती है, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, जिससे यह साबित करने की कोशिश की गई कि विधवा पुनर्विवाह की मनाही शास्त्रोक्त है और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हिंदू रीति रिवाजों एवं मान्यताओं में हस्तक्षेप माना जाएगा। पृष्ठ संख्या 54। ब्रैकेट क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 41। नया पृष्ठ 54। आर्य समाज ब्रैकेट में 1977 के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने स्त्री आंदोलन को आगे बढ़ाया, परंतु वह इन समस्याओं का समाधान धर्म ग्रंथों में ही तलाशते थे। बाद में उनके विचारों में थोड़ा परिवर्तन भी आया। उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश 1875 में प्रकाशित हुआ था। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य भारत में बहुपत्नित्व, बाल विवाह तथा स्त्री बहिष्कार जैसी कोई भी प्रथा नहीं थी। उनका मानना था कि वैदिक भारत में शिक्षित स्त्री तथा पुरुष एक समान है। उन्होंने लिखा कि लड़कियां यज्ञोपवीत पहनने के लिए अधिकृत हैं तथा उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार किया जा सकता है। संदर्भ ग्रंथ है वही पृष्ठ संख्या 48। 1873 में फूले ने बंबई तथा पूना में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह पर एक साथ जोर दिया। यह वही समय था जब स्त्रियां भी अपने बारे में सोचने लगी थी और आंदोलन में स्वयं हिस्सा लेने लगी थी। राधा कुमार के अनुसार 19वीं सदी में एक ऐसा भी समय आया जब महिलाओं की भलाई बुराई के मुद्दे प्रमुखता से उभरे और भारतीय महिलाओं की जीवन स्थितियों में सुधार के प्रारंभिक प्रयास पुरुषों द्वारा किए गए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस काम को अंजाम दिया गया। उनकी पत्नियों, बहनों, पुत्रियों और उनके संरक्षणाधीन लोगों ने इसे अंजाम दिया, क्योंकि नारी शिक्षा जैसे अभियानों से प्रभावित होकर ही ये सब आंदोलन में शामिल हुए। और 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के स्वायत्त संगठन बनने शुरू हो गए। स्त्री चेतना को प्रखर अभिव्यक्ति देने वाली पत्रिका को भारतेंदु ने 1874 में बाला बोधनी नाम से प्रकाशित किया था, जिससे स्त्री स्वाधीनता आंदोलन को हिंदी क्षेत्र में गति मिली। 19वीं शताब्दी में जिन महिलाओं ने स्त्री संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें रुक्माबाई और पंडिता रमाबाई प्रमुख हैं। रुक्माबाई द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के कारण उसके पति दादाजी भीकाजी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत में तो वह हार गया, लेकिन बंबई हाई कोर्ट ने भीकाजी के पक्ष में फैसला दिया। बावजूद रुक्माबाई हार नहीं मानी, उन्होंने इंग्लैंड जाकर एमडी की उपाधि प्राप्त की और भारत लौटकर काफी दिनों तक डॉक्टरी की। संदर्भ ग्रंथ दुर्ग द्वार पर दस्तक, लेखिका है कात्यायनी, प्रकाशन परिकल्पना लखनऊ, द्वितीय संस्करण 1998, पृष्ठ संख्या 122। अब पृष्ठ संख्या 55। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल को पश्चिमी महाराष्ट्र के गंगामल के जंगल में हुआ था। रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी 9 वर्षीय पत्नी लक्ष्मीबाई को पढ़ाने का निर्णय लिया, जिसके कारण उन्होंने ब्राह्मणों ने बहिष्कृत कर दिया जिसके कारण उन्हें ब्राह्मणों ने बहिष्कृत कर दिया। वह पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ जंगलों में रहने के लिए मजबूर हुए। वही जंगल में रमाबाई का जन्म हुआ। 1877 के अकाल में अनंत शास्त्री और लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। रमाबाई ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के स्त्री सुधार कार्य को आगे बढ़ाया। एक विदुषी के रूप में रमाबाई की ख्याति कलकत्ता तक पहुंची। कलकत्ता में रमाबाई के भाषण से वहां के पंडित बहुत प्रभावित हुए। इस बीच उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद रमाबाई संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गईं। रमाबाई ने बिपिन बिहारी मेधावी नामक कलकत्ता के एक दलित वकील से अंतरजातीय विवाह किया, जिससे एक बेटी मानो हुई। परंतु 1882 में मेधवी की मृत्यु हो गई। 1882 में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया, तो रमाबाई ने उसके सामने उपस्थित होकर सुझाव दिया कि भारतीय स्त्री की मानसिकता को देखते हुए उनका इलाज महिला चिकित्सकों द्वारा किया जाए। अतः भारतीय स्त्रियों को मेडिकल कॉलेजों में भर्ती किया जाना चाहिए। रमाबाई की गवाही ने ऐसी हलचल पैदा की कि ये बातें महारानी विक्टोरिया के कानों तक पहुंची। बाद में रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1889 में बंबई महाराष्ट्र का पहला विधवा गृह खोला। रमाबाई के शारदा सदन की जनसंख्या शताब्दी के अंत तक 1900 थी। रमाबाई ने एक विद्यालय और एक औद्योगिक विद्यालय भी खोला। 1922 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इसका संदर्भ है स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 65। इस बीच लेखन के क्षेत्र में भी कई महिलाएं आगे आईं और उन्होंने पुरुष निर्मित धर्मों, संहिताओं और कानूनों को अपने तर्कों से चुनौती दी। इस संदर्भ में 1882 का वर्ष इस मायने में ऐतिहासिक है कि इस वर्ष दो पुस्तकें स्त्री द्वारा लिखी हुई प्रकाशित हुई, जो पारंपरिक पुरुष चिंतन को सिरे से खारिज करती हैं और स्त्री एकता पर बल देती हैं। पहली पुस्तक 1 जनवरी 1982 को लुधियाना से हिंदी में सिमंतनी उपदेश नाम से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की वर्तमान में खोज करने वाले लेखक धर्मवीर ने इसकी लेखिका का नाम एक अज्ञात हिंदू औरत दिया है, क्योंकि लेखिका का नाम इस पुस्तक में नहीं है। इस पुस्तक के तेवर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर लेखिका उस समय ज्ञात होती तो निसंदेह सूली पर चढ़ा दी जाती। दूसरी पुस्तक है ताराबाई सिंदे की मराठी में लिखी स्त्री पुरुष तुलना। वीर भारत तलवार का मानना है कि ताराबाई सिंदे के पिता का संबंध ज्योतिबा फूले के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन से था, जिसका प्रभाव सिंदे की इस पुस्तक में स्पष्ट पृष्ठ संख्या 56 रूप से देखा जा सकता है। इस पुस्तक में अतीत में गढ़े गए एक मिथकों को भी खंगाला गया है। संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ 65 से 67। इस पुस्तक को लेकर सत्यशोधक समाज के दो सदस्यों कृष्ण राव भालेकर एवं ज्योतिबा फूले के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई थी। पुस्तक में स्त्री पुरुष की तुलना करते हुए यह बताया गया कि धोखेबाजी, मक्कारी, संदिग्ध चरित्र एवं असहिष्णुता के जो अवगुण स्त्रियों में पाए जाते हैं, वे समान रूप से पुरुषों में भी मौजूद होते हैं। बहरहाल भालेकर ने इस पुस्तक पर नोक भौं चढ़ाते हुए लिखित रूप से उत्तेजक भाषा में सिंदे की आलोचना की, जिसका जवाब उसी भाषा में देते हुए ज्योतिबा फूले ने आरोप लगाया कि भालेकर उस भारतीय परिवार प्रणाली का बचाव कर रहे हैं, जिसमें पुरुषों को हर प्रकार की मनमानी करने की छूट तथा स्त्रियों को असहाय तथा घर की चार दीवारी में कैद करने का रिवाज है। संदर्भ ग्रंथ तद्भव, अप्रैल 2001, पृष्ठ संख्या 65, वीर भारत तलवार का लेख, 19वीं सदी में स्त्री चेतना और ताराबाई सिंदे। 20वीं सदी की शुरुआत से स्त्रियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन एवं संगठनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। 1889 ईस्वी के बंबई कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन कम से कम 10 महिला प्रतिनिधियों ने बंबई कांग्रेस में हिस्सा लिया, जिनमें से एक का चुनाव पुरुषों द्वारा एक जनसभा में किया गया, जबकि अन्य स्त्रियां विमेंस क्रिश्चियन टेम्पटेंस से आई थी। 1900 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता ब्रैकेट में 16वें अधिवेशन में बोलने वाली प्रथम महिला श्रीमती कादम्बनी बाई गांगुली ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ देखें स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 78 एवं 69। 78 एवं 79, सॉरी, पैराग्राफ चेंज। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में स्त्री मुक्ति आंदोलन की दिशा में कई ऐसी महिलाएं सामने आईं जो एक ही परिवार से संबंधित थी, जैसे नेहरू परिवार की महिलाएं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, रामेश्वरी नेहरू, उमा नेहरू, कमला नेहरू और रूप कुमारी नेहरू। 1909 ईस्वी में रामेश्वरी ने प्रयाग महिला समिति की स्थापना की और अपने संपादन में स्त्री दर्पण नामक पत्रिका की शुरुआत की। ब्रैकेट इसी के साथ ब्रैकेट में माधुरी 1922 ईस्वी, सुधा 1977 ईस्वी, हंस 1930 ईस्वी और चांद 1922 ईस्वी जैसी पत्रिकाओं के प्रकाशन से भी स्त्री स्वाधीनता आंदोलन को खासकर हिंदी क्षेत्र में गति मिली। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रारंभिक दौर में जिन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें रविंद्रनाथ टैगोर की चौथी पुत्री स्वर्ण कुमारी देवी ब्रैकेट में 1856 से 1932 ईस्वी और स्वर्ण कुमारी देवी की बेटी सरला देवी घोषाल का नाम उल्लेखनीय है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। सरला देवी 20वीं सदी में मातृ केंद्र राष्ट्रवाद तथा उसके फलस्वरूप क्रांतिकारी आतंकवाद की सूत्रधार थी। हर दृष्टिकोण से सरला देवी एक आत्मनिर्भर तथा विद्रोही महिला थी। 1910 ईस्वी में सरला ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए स्त्री महामंडल की स्थापना की। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ दुर्ग द्वार पर दस्तक, पृष्ठ संख्या 124। पैराग्राफ कुछ लोग स्त्री मुक्ति आंदोलन को जड़ से काटते हुए उसे पूरी तरह उत्तर आधुनिक विमर्श में रिड्यूस करते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की मंशा उन लोगों के संघर्षों को नजरअंदाज करना है जो 19वीं शताब्दी से लगातार चलता आ रहा है। पृष्ठ संख्या 57। बहरहाल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जिन महिलाओं ने स्त्री पर जोर दिया उनमें मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा ब्रैकेट में 1861 से 1936 और एनी बेसेंट ब्रैकेट में 1847 से 1993 का नाम उल्लेखनीय है। 1906 में आयोजित भारतीय समाज सम्मेलन में स्त्री शिक्षा पर जोर देते हुए सरोजनी नायडू ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, शिक्षा नामक शब्द किसी भी भाषा का सबसे भ्रामक शब्द है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए निर्देश दिए जाने को शिक्षा की पारंपरिक परिभाषा कहा जा सकता है, परंतु शिक्षा एक ऐसा असीम सुंदर अपरिहार्य वातावरण है जिसमें हम जीते रहते तथा अन्य कार्य करते हैं। क्या कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त शुद्ध वायु के उसके जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित रहने की हिम्मत कर सकता है? तो फिर कोई भी मनुष्य किसी इंसान को उसके जीवन और आजादी की अविस्मरणीय विरासत से कैसे वंचित कर सकता है। आपके पिताओं ने आपकी माताओं को इस अविस्मरणीय जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित करके आपको लूटा है। इसलिए मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि आप अपनी स्त्रियों के परंपरागत अधिकारों को बहाल करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप नहीं, असली राष्ट्र निर्माता हम हैं, तथा हमारे सक्रिय सहयोग के बिना प्रगति के किसी भी बिंदु पर की जाने वाली आपकी सभी बैठकें एवं कांग्रेसें व्यर्थ होंगी। आप अपनी स्त्रियों को शिक्षित करें और देखें कि राष्ट्र स्वयं अपनी रक्षा कर लेगा, क्योंकि यह बात कल भी सत्य थी, आज भी है और रहती दुनिया तक सत्य रहेगी। पलना झुलाने वाले हाथ ही विश्व पर शासन करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ देखें स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 89-90। राधा कुमार के अनुसार 20वीं सदी के प्रारंभ में स्त्री की राष्ट्रमाता की छवि बनती गई। इसी दौरान बंगाल में शक्ति की प्रतीक काली और दुर्गा की पूजा की शुरुआत हुई। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। इस दौर में बहस इस बिंदु पर आकर ठहर गई कि मध्यवर्गीय स्त्रियों की भूमिका किस रूप में परिभाषित की जाए। उन्हें मातृभूमि के लिए मातृत्व के नैसर्गिक एवं महत्वपूर्ण गुणों से ओतप्रोत स्त्री माना जाए, या कि राष्ट्र की माता या ब्रिटिश भारतीय समाज की माँ के रूप में परिभाषित किया जाए। स्त्रीत्व की प्रकृति के स्वरूप को परिभाषित करने की बहस 1920 के दशक में तब तक जारी रही जब तक कि आंदोलनों ने में बड़े पैमाने पर स्त्रियों की बढ़ती सक्रियता ने जागृति में परिवर्तन को प्रभावित नहीं किया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सरोजनी नायडू, पुस्तक स्पीचेस एंड राइटिंग्स, मद्रास, जी ए नेटसन, 1964 ईस्वी, पृष्ठ संख्या 18-20। देखें स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 112। पैराचेंज। 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक तक आते आते स्त्री स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई। 1908 में मद्रास में महिला परिषद ब्रैकेट में लेडी कांग्रेस संपन्न हुई, जिसमें समूचे भारत से आई स्त्रियों में ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी तथा अंग्रेजी में 19 पर्चे पढ़े। 1917 में एनी बेसेंट, डोरोथीजिन, राजदास, मालती पटवर्धन, अम्मू स्वामीनाथन, श्रीमती दादा भाई एवं श्रीमती अंबुजमल ने मिलकर विमेंस इंडियन लेडीज कांग्रेस की स्थापना की, जिसके पृष्ठ संख्या 58 बारे में राजकुमारी अमृत कौर का कहना था कि यह भारत में उदित होने वाला पहला शुद्ध नारीवादी संगठन है। 1915 में गांधी जी ने कस्तूरबा के साथ मिलकर साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष शामिल हुए। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा बनी। 1929 ईस्वी में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य के रूप में प्राग में संपन्न विमेंस लीग फॉर एंड फ्रीडम की बैठक में भाग लिया। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 115। पैराचे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के होने वाले अधिवेशनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिससे स्त्रीवादी आंदोलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। पूना में हुए पहले अधिवेशन में 2000 महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 1931 ईस्वी में हुए चौथे अधिवेशन में 1 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में सम्मेलन ने दिल्ली में लेडी इरविन गृह विज्ञान कॉलेज खोलने के लिए धन संग्रह की शुरुआत की और 1932 में इस कॉलेज की स्थापना हुई। 1933 से 34 में अखिल भारतीय सम्मेलन, इंडियन विमेन्स एसोसिएशन तथा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ विमेन के 3 प्रतिनिधियों को स्त्रियों को वोट दिए जाने के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गवाही देने के लिए लंदन बुलाया गया। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 122, 123, 124, 130 एवं 131। इस प्रकार 19वीं सदी के तीसरे दशक तक आते आते स्त्रियों ने स्वयं आंदोलन की बागडोर थाम ली। इन आंदोलनों का प्रभाव साहित्य और कला पर भी पड़ा। लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में स्त्री समस्याओं को लेकर साहित्य की रचना होने लगी। 1920 में प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने स्वाधीनता का नृत्य शीर्षक से एक कविता लिखी। इन्वर्टेड कॉमोबल। नाचो खुशियां मनाओ, जो कहते थे कि स्त्रियों का पुस्तक छूना पाप है वे मर चुके हैं। जो मूर्ख कहते थे कि वे स्त्रियों को घरों में कैद कर देंगे वे अब अपनी सूरत नहीं दिखा सकते। उन्होंने हमारी जगह घर में दिखाई, जैसे हम कोई बैल हो जो चारा खाए, पीटा जाए और मुंह बंद करके काम करे। हमने यह सब खत्म कर दिया है। नाचो गाओ खुशियां मनाओ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 136 से 137। पैराजी। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से भारतीय स्त्रियां समाज सुधार, राजनीतिक आंदोलन और संस्कृति के सभी मोर्चों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। इसी समय जाति को मिटाने के लिए अंतर जातीय विवाहों पर भी बल दिया गया। पृष्ठ संख्या 59। पंडिता रमाबाई ने दलित से शादी कर इतिहास रचा। रूढ़ीवादी हिंदू बंगाली परिवार में जन्मी अरुणा गांगुली ने 19 वर्ष की अवस्था में 42 वर्षीय समाज सेवी क्रांतिकारी आसफ अली से विवाह किया। बाद में वह अरुणा आसफ अली के नाम से मशहूर हुई। नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई। इनवर्टेड कॉमा ओपन। अरुणा की नायिका के रूप में अरुणा आसफ अली को स्वाधीनता आंदोलन की महान बूढ़ी महिला और 1942 के आंदोलन की नायिका के रूप में जाना गया। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 1854 ईस्वी में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा NFIW ब्रैकेट में राष्ट्रीय भारतीय महिला फेडरेशन की स्थापना में भी सहयोग दिया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 141 से 142। इससे पहले स्त्रीवादी आंदोलन के दबाव में बाल विधवा कानून -1928 लाया गया, जो 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। 1931 के लाहौर सम्मेलन में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने श्रम प्रस्ताव पारित किया। इस बीच गिरफ्तार होने वाली महिलाओं की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। बंबई में 1930 ईस्वी में चुनाव बहिष्कार करने वाली 400 स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका घेराव इतना जबरदस्त था कि सरकार को चुनाव का एक दिन के लिए चुनाव को एक दिन के लिए टाल देना पड़ा। गिरफ्तार स्त्रियों को सजा सुनाई गई। घर घर जाकर खादी बेचने के जुर्म में इंदुमती गोयनका को 9 महीने कैद की सजा तथा हौसपेट में निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के लिए जयलक्ष्मी केशवर राव को 7 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 150 से 152। महात्मा गांधी ने भी बड़े पैमाने पर स्त्रियों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। स्वाधीनता संघर्ष में गांधी का प्रभाव स्त्रियों पर किस रूप में था, इसे मार्गरेट कुजिंग्स के निम्नलिखित वृत्तांत से समझा जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सफेद बालों वाली एक दृढ़ एवं शिक्षित खेतिहर वृद्धा अपनी अधेड़ उम्र की बेटी के साथ एक दिन अप्रत्याशित रूप से हमारी जेल के राजनीतिक गुट में आई। उन्होंने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि उसने अपने मर्द से सुना है कि स्वराज आंदोलन चलाने वाले गांधी जी खुद भी जेल में हैं। वृद्धा ने कहा कि इतना सुनते ही हम दोनों ने आपस में बातचीत की कि अगर गांधी जी जेल में है तो आओ हम भी वहीं चले। उन्होंने दूसरे दिन मर्द के खेत में जाने का इंतजार किया और जैसे ही वह घर से निकला, हम दोनों ने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की तथा 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सबसे नजदीक कस्बे तक पैदल चलकर विदेशी कपड़ों की एक दुकान का घेराव किया एवं गिरफ्तारी दी। उन्हें संतोष तभी हुआ जब जेल में सलाखों के बीच पहुंच गईं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 169। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि उस समय दलित आदिवासी और श्रमिक महिलाओं ने भी स्वाधीनता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, परंतु जैसा पृष्ठ संख्या 60 की होता गया आया है कि वे नारे लगाने वाली भीड़ में खोकर रह गईं। उनका इतिहास अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इस संदर्भ में गुड़ियालू का नाम लिया जा सकता है, जिसने 1925 ईस्वी में अपने भाई के मृत्युदंड के बाद मणिपुर में नागरिक अवज्ञा आंदोलन की बागडोर संभाली। गुड़ियालू को गिरफ्तार करने में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़े। इसके बावजूद इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जैसा कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल अनेक आदिवासी आंदोलनकारियों के साथ अक्सर होता था, उनके ऊपर कांग्रेसी नेताओं द्वारा निर्धारित पाबंदियां लागू नहीं थी, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने गुड़ियालू का अक्सर जिक्र किया, परंतु राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उसकी चर्चा नहीं की। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास 173, पृष्ठ संख्या। अभी हाल ही में हरिराम मीणा के एक शोध से यह पता चला है कि राजस्थान में मानगढ़ में हुआ आदिवासियों का नरसंहार जलियांवाला बाग नरसंहार से भी बहुत बड़ा था, लेकिन इतिहास में उसका जिक्र तक नहीं मिलता। इसी प्रकार डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की आदिवासी वीरबाला कालीबाई ने गांव के एक शिक्षक को बचाने के लिए अंग्रेज सैनिकों से संघर्ष किया और गोलियों की शिकार हुई। 1930 के आसपास स्त्रियों ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, जिनमें प्रीति लता वाडेकर, शांति घोष, सुनीति चौधरी, कमला दास गुप्ता, दुर्गा भाभी, बीना दास आदि प्रमुख थी। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने 1931 ईस्वी में टीपर के जिला मजिस्ट्रेट स्टीपेंस की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मजिस्ट्रेट ने महिलाओं के शोषण के लिए सर्वाधिक सरकारी नियमों का उल्लंघन किया था। दोनों महिलाओं ने अदालत में ही स्टीपेंस को गोली मारकर ढेर कर दिया। दोनों को मृत्यु दंड मिला, जिसके बाद में आजीवन कारावास जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। गवर्नर पर जानलेवा हमला करने के आरोप में कॉमरेड बीना दास को 9 वर्षों का कठोर कारावास और कमला दास को 6 साल की कैद सुनाई गई। सितंबर 1932 में युवा महिला क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेकर ने अंग्रेजों के पहाड़ ताली क्लब पर धावा बोलकर क्लब के हॉल में बम फेंका, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। गिरफ्तार होने से पहले ही पुरुष वेशधारी प्रीति लता ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर से भगाने में मदद की। ये क्रांतिकारी महिलाएं कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रभावित थी। 1930 के दशक से ही नारीवादी आंदोलन में कम्युनिस्ट का प्रवेश शुरू हो गया था। बहरहाल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, प्रीति लता वाडेकर की कारगुजारियों को देखने के बाद पहली बार लोग इस तथ्य से सहमत हुए कि जो काम पुरुषों ने किया है वही काम भारतीय स्त्रियां भी कर सकती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ देखें स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 182 से 191। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रीवादियों के बीच बिखराव आता गया, क्योंकि पृष्ठ संख्या 61 अब अंग्रेज जैसा दुश्मन नहीं था। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हिंदू कोड बिल का तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक प्रभावशाली कांग्रेस जनों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया, इसलिए इसे कई टुकड़ों में इसकी कुछ धाराओं को अलग कानून की शक्ल देकर 50 के दशक में मध्य में पारित किया गया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ देखें स्त्री संघर्ष का इतिहास, पृष्ठ संख्या 191। अब लिंग आधारित शोषण आंदोलन का केंद्र बिंदु बना। श्रृंखला की कड़िया में महादेवी वर्मा ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हमें न किसी पर जय चाहिए न किसी पर पराजय, न किसी पर प्रभुत्व चाहिए न किसी पर प्रभुता, केवल वह स्थान वे स्वत्व चाहिए जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, परंतु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग बन नहीं सकते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा, राधा कृष्ण प्रकाशन, 1995, पृष्ठ संख्या 23। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में तक आते आते पाश्चात्य स्त्री विमर्शवादी साहित्य का प्रभाव भी भारतीय स्त्री स्वाधीनता आंदोलन पर दिखाई पड़ता है। अब स्त्री बेहिचक पुरुष शोषण के विरुद्ध बोलने लिखने लगी। इस समय जिन विदेशी लेखिकाओं और पुस्तकों ने भारतीय स्त्री आंदोलन को प्रभावित किया, उनके मूल में 1946 ईस्वी में लिखित और 1953 में अंग्रेजी में प्रकाशित सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकेंड सेक्स, बेटी फ्रीडन की द फेमिनिन मिस्टिक आदि पुस्तकें थी। इससे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल की 1869 ईस्वी में द सब्जेक्शन ऑफ विमेन प्रकाशित हो चुकी थी। बहरहाल 1970 के दशक में जब नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई तो महिलाओं ने इस सशस्त्र क्रांति में हिस्सा लिया और गुरिल्ला का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसी समय प्रगतिशील महिला संगठन ने नारीवाद में तारतम्यता स्थापित करते हुए स्त्री पुरुष बराबरी की मांग उठाई। प्रगतिशील महिला संगठन POW के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्त्रियों के दो बुनियादी ढांचे थे डैश लैंगिक आधार पर श्रम का विभाजन तथा वह संस्कृति जिसने इसे प्रतिपादित किया। श्रम विभाजन में भेदभाव के पीछे मंशा यही थी डैश वह सामाजिक बुनावट जो स्त्रियों को पुरुषों से हेय प्रमाणित करने के लिए औचित्यपूर्ण सिद्धांत गढ़ लेती थी, जिसके तहत कहा जाता था कि स्त्रियां पुरुषों से कमजोर हैं। कालांतर में दोनों में परिवर्तन आया तथा रूढ़िवादिता एवं बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दोनों परस्पर विरोधी रूप से सामने आए। परोक्ष रूप से माना गया कि सच्चाई को उजागर करने के साथ साथ इस प्रकार की परस्पर विरोधी मान्यताओं ने स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन की स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि घोषणा पत्र में यह बात नहीं कही गई, बल्कि घोषणा पत्र में स्त्रियों के शोषण को समाप्त करने की युक्तियों को रेखांकित किया गया। अक्टूबर 1975 में माओवादी आंदोलन से पैदा हुए लाल निशान पार्टी, श्रम संगठन तथा मागोवा जैसे संगठनों ने पुणे में संयुक्त महिला मुक्ति संघर्ष सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में समूचे महाराष्ट्र की स्त्रियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से कुछ माकपा से संबद्ध थी तथा शेष अन्य समाजवादी तथा रिपब्लिकन पार्टी से संबद्ध थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास पृष्ठ संख्या 208। समकालीन स्त्री स्वाधीनता आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए राधा कुमार ने पृष्ठ संख्या 62 लिखा है कि कार्यकर्ता उस व्यक्ति को माना जाता था जो अपने सभी स्वार्थों को त्याग कर बहुजन हिताय काम करता रहता। और भारत में एक लंबे अरसे से यही राजनीतिक संस्कृति रही है। यह बात अलग है कि गांधीवादियों, समाजवादियों, कम्युनिस्टों तथा माओवादियों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की। ऐसा माना जाता था कि सभी नारीवादी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़े हों, आश्चर्यजनक रूप से कार्यकर्ता की छवि के बारे में सभी इस मानदंड का पालन कर रहे थे। हालांकि नारीवादियों में यह विरोधाभास भी उजागर हुआ कि नारी पवित्रता तथा निस्वार्थता दोनों ही स्त्रियों के शोषण के ढांचे के अंग थे। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित कर यौनाचार या स्त्रियों के उत्पीड़न के कम महत्वपूर्ण तरीकों को कुछ समय के लिए नजरअंदाज करके मतभेद की समस्या का हल निकाला गया। इस संदर्भ में यह महज संयोग ही नहीं है कि समकालीन नारीवादी आंदोलनों में दो असरदार आंदोलन शुरू किए गए। पहला आंदोलन चलाया गया दहेज मृत्यु के विरुद्ध में तथा दूसरा बलात्कार के विरुद्ध। दोनों आंदोलन में स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा के निर्मम स्वरूप पर प्रकाश डाला गया। संदर्भ ग्रंथ स्त्री संघर्ष का इतिहास पृष्ठ संख्या 217, 218 एवं 219। इस प्रकार 19वीं सदी से शुरू हुआ स्त्री स्वाधीनता आंदोलन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आज हर मोर्चे पर संघर्षरत है। चिंतन, साहित्य, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में वह लिंग आधारित विषमता समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी यह कह पाना मुश्किल है कि निकट भविष्य में यह आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। महिला आरक्षण बिल संसद में अटका हुआ है। वर्तमान समय में पूंजीवाद ने जिस प्रकार से मानवतावादी मुखौटा ओढ़कर आजादी के नाम पर इस आंदोलन को भटकाया है, वह चिंता का विषय है। इसके साथ ही स्त्री पर होने वाले अत्याचारों और बलात्कारों में वृद्धि होती जा रही है। सामूहिक बलात्कार, दहेज उत्पीड़न आदि की घटनाएं रुकती नजर नहीं आ रही हैं। संतोष का विषय यह है कि प्रतिरोध में तनी मुट्ठियां बढ़ती जा रही हैं और अब वे आर पार संघर्ष चाहती हैं। ब्रैकेट में यह आलेख राधा कुमार की पुस्तक स्त्री संघर्ष का इतिहास की संक्षिप्त प्रस्तुति है। भारतीय स्त्री मुक्ति आंदोलन को विस्तार से जानने के लिए उक्त पुस्तक को देखा जा सकता है। स्त्री संघर्ष का इतिहास, राधा कुमार।